ओम शांति। सभी एक साथ कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस शांतिवन परिसर में पधारे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाग लेने के लिए तो हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिन भर तो आपके बहुत सारे सत्र चलेंगे, लेकिन प्रातः काल का सत्र इस समय का वो विशेष रूप से राजयोग से संबंधित है। विश्व शांति के लिए राजयोग, तो क्या है योग और क्या है राजयोग और कैसे इस राजयोग से विश्व में शांति आएगी, इसी लक्ष्य को लेकर के यह सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और भारत, नेपाल और विश्व के कई स्थानों से भाई बहने आए हैं। इस समय मनुष्य की यही मांग है कि हमें शांति चाहिए। अनेक प्रकार के वैभव, अनेक प्रकार के आकर्षण तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आंतरिक शक्ति, आंतरिक शांति आज लुप्त होती जा रही है। इसके क्या कारण है वो तो आप भिन्न भिन्न सत्रों में सुनेंगे, और फिर कैसे इन्हें प्राप्त करें वो भी आप सुनेंगे, लेकिन राजयोग से कैसे ये प्राप्त होता है ये एक बहुत ऊंचा विषय है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा योग क्या चीज है, फिर राजयोग क्या चीज है, क्योंकि योग के नाम पर आज भिन्न भिन्न प्रकार के योगासन जो सिखाए जाते हैं, अलग अलग योगा स्कूल्स चारों ओर खुले हुए हैं जिसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं सिखाई जाती है, आसन सिखाए जाते हैं, और यही लक्ष्य दिया जाता है A healthy mind in a healthy body। पहले बॉडी को हेल्दी बनाएं, फिर माइंड को आप स्टेबल बना सकेंगे। लेकिन अगर हम WHO का माने तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 80% ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, शरीर के 80% रोग मन के कारण है, साइकोसोमेटिक डिजीजेज है, जिसमें साइकोसोमेटिक से पहले आता है, अर्थात जो मन से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, और बाकी 20% रोग अन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो अगर 80% रोगों का कारण मन है, जिसमें तनाव, चिंता, भय, ये सारे अनेक प्रकार के जो मनोरोग हैं, उनके कारण उत्पन्न है, तो हमारा सबसे पहला कदम मन को ठीक करने का होना चाहिए। और अगर मन को हमने ठीक कर लिया तो तन के 80% रोग तो वैसे ही नहीं आएंगे। अब मन को कैसे ठीक करें? कई बार हम लोगों को कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन चिंता कैसे नहीं करें ये तो बताते नहीं है, केवल चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, आश्वासन भी देते हैं, पर चिंता न करें उसके लिए क्या सोचें ये मुश्किल से बताते हैं। तो चिंता न करो और क्या सोचो, मन को कैसे एक दिशा प्रदान करो, ये वास्तव में योग सिखाता है। तो योग कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही नाम नहीं है, लेकिन मन का संतुलन हम कैसे बना के रखें, उसमें हर वक्त सकारात्मक चिंतन कैसे लाएं, ताकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे, इस तथ्य को हम साकार कर सकेंगे। तो हमारी सोच कैसी हो उसके आधार पर ही हमारा जीवन निर्धारित होगा। और सोच को हम सही दिशा कैसे दें जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सके, वास्तव में योग हमें वही सिखाता है। जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन कैसा जिए। अगर जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं यही है, तो जीवन तो एक जैसे अभिशाप है। जीवन वरदान, प्रभु की देन, एक गिफ्ट भगवान का, ये तब महसूस कर सकेंगे जब जीवन में सुख होगा, शांति होगी, खुशी होगी, सद्भावना होगी, दया होगी, विवेक होगा। और ये सब तब आएगा जब हम पहले खुद को पहचानेंगे, हम कौन हैं और इन सद्गुणों का जो दाता है वो कौन है, और उनसे हमारा संबंध होगा, उनसे शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, तब हमारा जीवन सचमुच श्रेष्ठ बन जाएगा और हम जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। तो योग वास्तव में कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है। अगर योग का शाब्दिक अर्थ देखें तो योग और वियोग, ये दो शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। योग का अपोजिट है वियोग, और वियोग शब्द का अर्थ जरा ज्यादा समझ में आता है। वियोग माना बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना, सेपरेशन, और उसके कॉन्ट्रास्ट में योग माना मिलना, जुड़ना, एक होना, कनेक्शन, लिंक, जॉइंट, मीटिंग। तो जहां मिलन है वहां योग है, और जहां बिछड़ना है वहां वियोग है। और अगर देखा जाए योग और वियोग, ये जीवन के दो पहलू हैं, ये साथ साथ चलते हैं। आप जहां से आए वहां से वियोग हुआ, और जहां आए यहां से योग हुआ। तो योग और वियोग सदा हमारे अनुभव में आते ही रहते हैं। तो योग शब्द को समझना बड़ी बात नहीं है। जहां भी मिलन है वहां योग है। दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते वो भी योग है, उसको सहयोग कहते हैं। हम कोई बात सोचते हैं और वो बात हो जाती है, उसको संयोग कहते हैं। हम दो चीजों को मिलाते हैं और एक तीसरी चीज प्रकट करते हैं, तो वो प्रयोग किया। तो सहयोग, संयोग, प्रयोग, ये तो जीवन के अंदर हम देखते ही रहते हैं। और मन जहां भी जाता है उसके साथ योग होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हैं और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे क्या योग था मेरा, आपको अभी अभी याद किया और आप आ गए। तो किसको याद करना, ये भी एक योग है। और याद ये मन का काम है, मन से याद करते हैं। तो एक हिसाब से हम सब योगी हैं, सब योगी हैं, क्योंकि मन जहां जहां ले जाते हैं, चाहे व्यक्ति के पास, चाहे कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, जिसके विषय में हम सोचते हैं, जहां मन पहुंचाते हैं उसके साथ योग हो जाता है। तो हम सब योगी हैं, लेकिन राजयोग किसको कहेंगे, जब ये मन परमात्मा में लगता है। अब परमात्मा में भी तो मन लगता है, क्यों नहीं लगता है? जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब तो परमात्मा ही याद आता है, अनायास भी मुख से निकल आता, ओ गॉड, हे भगवान। कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी कहेंगे गॉड नोज, ईश्वर जाने। तो मन से हम ईश्वर को भी याद करते हैं और दुख में तो करते ही हैं। इसलिए परमात्मा को भी याद करने के कारण हम राजयोगी भी हैं, क्योंकि राजयोग माना जो सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है, उनसे मन की तार जोड़ना। अब वो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा में मन कैसे जाए, उसके लिए कई विधियां बताते हैं। कोई जाप करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं। लेकिन जब हम राजयोग कहते हैं तो वो सबसे रॉयल विधि है, रॉयल तरीका है, सबसे श्रेष्ठ रास्ता है मन को परमात्मा में लगाने का। और उनसे जो प्राप्ति है वो भी सबसे श्रेष्ठ है। क्या है सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति? जो हम जीवन में चाहते हैं। कई बार हम किसी से पूछते हैं, आप जीवन में क्या चाहते हैं? भगवान ने तो आपको सब कुछ दे दिया है, धन दौलत, मान शान, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पोजीशन, सब कुछ है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? और तो यही जवाब मिलता है, बस भगवान ने तो सब कुछ दिया है, बस अभी केवल शांति चाहिए। यही कहते हैं ना, शांति चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? इतनी सब प्राप्तियां हैं, कोई कमी नहीं है जीवन में, फिर भी सबसे ऊंची प्राप्ति जो इन सबसे ऊपर है वो है शांति। तो क्या इन चीजों से शांति नहीं मिली? अवश्य है नहीं मिली, तभी तो शांति चाहिए। अब शांति पाने की विधि कोई बाहर नहीं है, आपके भीतर है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, तो अंदर जाओ, अंदर जाओ तो वहां शांति मिलेगी। अब किसके अंदर जाओ तो शांति मिलेगी? कोई शरीर को काटने से तो शांति नहीं मिलने वाली है, किसके अंदर जाओ? और उसके लिए कहा जाता है खुद को पहचानो। तो खुद को पहचानो तो शांति मिलेगी। अब कैसे हम शांति प्राप्त कर सकेंगे खुद को पहचानने से, यही राजयोग का प्रथम कदम है। क्योंकि शांति किसको चाहिए? शरीर को तो शांति चाहिए नहीं। शरीर की शांति का अर्थ दूसरा होता है। शरीर की शांति माना मृत्यु। मृत्यु नहीं चाहिए। जब किसकी मृत्यु होती है तब कहते हैं इनका देह शांत हो गया। तो देह शांत होना माना मृत्यु। और जब किसी की मृत्यु होती है तो भी उसके बाद हम ईश्वर से क्या कामना करते हैं? हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बॉडी इज ऑलरेडी इन पीस। इसलिए शरीर की शांति की कामना नहीं की जाती है, सोल आत्मा की शांति की कामना की जाती है। तो शांति शरीर को नहीं चाहिए। शरीर को तो जितना एक्टिव रखेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी, पर मन को जितना शांत रखेंगे उतनी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। अब ये मन को शांत रखने का मतलब ये भी नहीं है कि मन को दमन करना है, थॉट्स को दबाना है, ये मन की शांति नहीं है। क्योंकि मन का तो काम ही सोचना होता है, तो सोच को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन शांति के विचार मन में लाने से शांति आएगी। इसीलिए कहा आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप अशांति के बारे में सोचेंगे तो अशांति अनुभव होगी। अगर आप शांति के बारे में सोचेंगे तो शांति अनुभव होगी। इसलिए कहते अंदर जाओ, माना अंतर में शांति के विचार करो। अब ये विचार करने वाला कौन है? शरीर तो एक साधन है, माध्यम है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माध्यम है, पर बोलने वाला कोई और है। मस्तिष्क भी माध्यम है। उस ब्रेन में भी सोचने वाला कौन है? देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, वास्तव में ये शरीर नहीं है। शरीर तो माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? अगर ये आंखें ही देख रही है तो आंखें तो निर्णय नहीं कर सकती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये कान सुन रहे हैं तो कान निर्णय तो नहीं कर सकते हैं कि ये जो मैं सुन रहा हूं ये ठीक है या गलत है। ये मुख बोल रहा है पर मुख तो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं या नहीं ठीक बोल रहा हूं। तो ये निर्णय करने वाला कौन, सोचने वाला कौन? वास्तव में वही मैं हूं। आप कहेंगे वो तो मस्तिष्क का काम है, पर मस्तिष्क भी एक साधन है। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में होता है, तो हार्डवेयर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क या जो भी है बहुत पावरफुल है, लेकिन सॉफ्टवेयर वो तो अलग चीज है। तो हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या करते हैं, ये सब हार्डवेयर है, हार्ड पार्ट है। पर हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या दृश्य मन में देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ये सॉफ्ट पार्ट है। और यही सॉफ्ट पार्ट मैं हूं। इसीलिए बहुत सुंदर कहा गया, यू आर नॉट व्हाट यू वेयर। एक चोर भी सन्यासी की ड्रेस पहन करके सभा में बैठ सकता है और लोग उसको सोचेंगे ये सन्यासी, पर अंदर में वो चोर है, क्योंकि चोरी का ही सोच रहा है. सो यू आर नॉट वॉट यू वेयर, यू आर नॉट वॉट यू डू. आप जो करते हैं वही आप नहीं हैं, क्योंकि सुबह से लेकर आप बहुत कुछ करते हैं. क्या नहीं करते होंगे, कितने कितने रोल बजाते हैं. जैसे कोई एक्टर अनेक रोल बजाता है, लेकिन वही उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है. किसको विलियन का भी रोल मिलता है कोई पिक्चर में, लेकिन वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत अच्छा आदमी होता है, पर विलियन का रोल बजाना पड़ता है. सो यू आर नॉट वॉट यू डू, यू आर नॉट वॉट यू ईट. आप जो खा रहे हैं वही आप नहीं हैं. कई लोग बहुत मोटे होते हैं, चलो बहुत खा लिया, लेकिन इतने हल्के होते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, हल्के हैं. भले शरीर में 100 किलो वजन होगा, लेकिन हल्के हैं. जहां भी जाओ चले जाते हैं. और कोई इतने दुबले पतले भी होंगे, लेकिन मन से भारी है, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं. तो हल्का होना माना केवल बाहर का हल्का होना नहीं है, अंदर का भी हल्का होना चाहिए. बाहर का मोटा हो तो भी अंदर का हल्का हो सकता है, और बाहर का पतला हो तो भी अंदर का भारी हो सकता है. होता है ना. तो हम कौन हैं? बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने यही प्रश्न किया. सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये बहुत बड़े फिलोसोफर्स होके गए. उन्होंने यही प्रश्न किए, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, डोंट आई नो माई सेल्फ. तो कौन हूं मैं योगी? हम कई बार डबल कॉम्प्लेक्सिटी अपनाते हैं. दुनिया के आगे तो हम कुछ और अपने आप को दिखाते हैं, और भगवान के आगे तो कुछ और ही कहते हैं. दुनिया के आगे तो हम क्या कहते हैं, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतनी बढ़ाई करेंगे अपनी. और भगवान के आगे जाकर के क्या कहते हैं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दास हूं, मैं कपटी हूं, मैं गंदा हूं, मैं बंदा हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं मूर्ख हूं. अब दुनिया के आगे मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, और भगवान के आगे मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं. तो मैं क्या हूं, मूर्ख हूं या बुद्धिमान हूं या कोई तीसरी चीज हूं? तो भगवान के आगे कुछ और कहते हैं अपने लिए, और दुनिया के आगे कुछ और कहते हैं. भगवान के आगे कहेंगे मैं तो पापी हूं, और अगर किसी ने भूल से भी मुझे कह दिया तुम पापी हो, तो लड़ना चालू कर देते हैं. तुम मुझे पापी कहते हो, क्या समझा है तुमने, मैंने क्या पाप किया? तो भगवान के आगे तो हमने ही कहा, किसी और ने तो नहीं कहा मेरे लिए. तो ये जो दोहरा रूप हम अपना रहे हैं, इससे सिद्ध है कि वास्तव में दोनों ही अज्ञान है. इसलिए ज्ञान हम किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं. असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय. वो ज्ञान हमें दो भगवान, जिससे ये अज्ञान का अंधकार मिट जाए, ज्ञान का प्रकाश आ जाए. तो ज्ञान एक प्रकाश है, और वो ज्ञान हम ईश्वर से मांगते हैं. जिस ज्ञान से अमृतत्व का अनुभव हो, अमृतत्व का अनुभव माना कि मैं एक अविनाशी शक्ति हूं, मैं एक अजर अमर शक्ति हूं. इस शरीर से पहले भी मैं वो शक्ति थी, इस शरीर के बाद भी वो रहूंगी. वो कौन सी शक्ति हूं? जब शरीर, जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर को तो हम अग्नि को सौंप देते हैं या दफना देते हैं, क्योंकि जहां से ये शरीर आया है वहीं उसको वापस जाना है. पंच तत्वों से आया है, पंच तत्वों को लौटाना है. लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है. तो मैं कौन हूं, जो मिट्टी में मिलने वाली हूं या भगवान से आई हूं और भगवान के पास जाऊंगी? अब यही निर्णय हमें करना होगा, और यही है खुद को पहचानना. कि इस शरीर के भीतर मैं एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, एक चैतन्य सत्ता हूं। इस शरीर से पहले भी मैं थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, इस दुनिया की कोई वस्तु उसके साथ नहीं आती, लेकिन उसने जो कर्म किए हैं वो उसके साथ जाते हैं। तो कर्म किसके साथ जाते हैं? ये शरीर के साथ नहीं जाते, शरीर तो मिट्टी में मिल गया, वो तो जल गया। तो कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। तो कर्म करने वाली कौन? इसीलिए कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, क्योंकि कर्म करने वाली शक्ति आत्मा है और शरीर उसका माध्यम है। आत्मा जैसा शरीर द्वारा कर्म करेगी वैसा ही वो अपना संस्कार बनाएगी। इसीलिए आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा। शरीर के लिए नहीं कहते हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर, महान शरीर, नहीं, आत्मा। तो मैं वास्तव में इस देह के भीतर विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। न मैं ये देह हूं और न ही मैं जो अलग अलग रोल बजाती हूं वो ही मैं हूं। तो मेरी आइडेंटिटी वो है जो दुनिया के आगे भी वही है और भगवान के आगे भी वही है, सेम आइडेंटिटी, विल नॉट चेंज। तो वो कौन सी आइडेंटिटी है जो दुनिया के आगे भी हम दिखा सकूं और भगवान के आगे भी दिखा सकूं? वही वास्तव में मैं हूं, और वही मैं हूं जो मैं अपने जीवन में चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, खुशी मिले, शक्ति मिले। तो वास्तव में मैं वही हूं। अब ये कैसे मैं वही हूं? क्योंकि मैं वही हूं जो मैं सोच रही हूं, और वही हूं जो मैं चाहती हूं। बस इसी को ही हमें समझना होगा कि मैं कौन हूं। तो इस देह के भीतर मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं। कई कहते हैं कि अगर मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, तो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? शरीर तो दिखाई देता है, तो क्यों नहीं दिखाई देती आत्मा? क्योंकि आत्मा प्राकृतिक नहीं है, ये आंखें प्राकृतिक है, मैटर है, फिजिकल है। तो ये आंखें प्राकृतिक चीजों को ही देख सकती है। आत्मा प्राकृतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। तो जो मेटाफिजिकल चीज है, जो अप्राकृतिक है, वो प्राकृतिक चीजें आंख कैसे उसको देख सकती है? इसीलिए कोई ये आर्ग्यूमेंट करे कि मैं कैसे मानूं कि आत्मा है, दिखाई तो देती नहीं। लेकिन जो नहीं दिखाई देती वास्तव में वो ही सत्य है। जो दिखाई देता है आध्यात्म में वो सब असत्य है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म दोनों का हमेशा टक्कर होता है। विज्ञान कहता है जो दिखाई देता है वही सत्य है, और आध्यात्म कहता है जो दिखाई देता है वो सब असत्य है। क्योंकि सत्य असत्य की पहचान अलग अलग है। आध्यात्मिकता में सत्य की पहचान ये है कि जो स्थिर है, जो एक रस है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो अपरिवर्तनशील है, वो सत्य है। और जो बदलता रहता है, जो विनाश को प्राप्त होता है, जो अनित्य है, जो नष्ट होता है, जो पैदा होता है, वो सब असत्य है। अब उस हिसाब से इस प्रकृति में जो कुछ है ये सब परिवर्तनशील है, इसलिए कहा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अर्थात आत्मा और परमात्मा ये सत्य है। एक रूप से तो प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि प्रकृति बदलती है लेकिन अविनाशी जरूर है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पर इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर। पर आत्मा प्रकृति के स्पर्श से न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है, क्योंकि आत्मा पर कोई बाह्य प्रभाव पड़ने से, प्रकृति के प्रभाव से उसके रूप में परिवर्तन नहीं आता। पर है क्या चीज वो आत्मा, और वो ही मैं हूं। तो ये मैं कहने वाली एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, और मेरा ये शरीर जरूर है। तो मैं और मेरा में बहुत अंतर है। कई लोग इस अंतर को न समझने के कारण मेरा को ही मैं समझ लेते हैं। मैं फलाना हूं, ये नाम तो आपको जन्म लेने के 6 दिन के बाद आपके माँ बाप ने रखा, फिर आप नाम बदल भी सकते हो, तो वही नाम तो नहीं रहा, तो बदल गया। जन्म से लेके बुढ़ापे तक ये रूप कैसे बदलता रहता है, बदलता रहता है। हर 10 साल के बाद सारी बॉडी की सेल्स बदल जाती है। तो वो वास्तव में ये तो नहीं हूं, पर मैं वही हूं जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहूंगा, वो मैं हूं। अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता आत्मा। अब उसको समझना माना खुद को समझना, और वही मैं हूं जो मैं भगवान के आगे भी कह सकता हूं और दुनिया के आगे भी कह सकता हूं। वो कौन हूं? वो आत्मा जो मैं जीवन में चाहती हूं। क्या चाहती हूं? शांति मिले, खुशी मिले, प्रेम मिले, मैं वही हूं। इसीलिए बाहर नहीं है ये सब आपके अंदर है, माना ये आत्मा के गुण हैं। तो कैसे इन गुणों को हम अपने अंदर अनुभव करें, यही राजयोग सिखाता है। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती है, ये समझ जाएं। कोई नहीं शांति दे सकेगा, क्योंकि आपने ठान लिया आप अशांत हैं। और अगर आप मेडिटेशन करने में ये समझते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी। चाहे मर भी जाए ना ये शरीर, शांति तो आत्मा के साथ है, शरीर के साथ थोड़ी गई। शरीर चला जाएगा पर आत्मा जो सुख स्वरूप है वो सुख स्वरूप की स्थिति नहीं जाएगी। शरीर तो विनाशी है। तो मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं। कैसी होती है आत्मा? वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार होता है। होता है, क्यों नहीं होता है? ज्ञान चक्षु से भी आत्मा को हम पहचान सकते हैं, और परमात्मा ने अभी वो पहचान हमें दी है कि शरीर के भीतर देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली आप एक आत्मा हैं। अब कहाँ है आत्मा? मस्तिष्क तो एक साधन है, लेकिन इस साधन के द्वारा कार्य करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। तो आत्मा का स्थान भी मस्तिष्क में होगा। जब हम मन कहते हैं, मन भी वास्तव में आत्मा की शक्ति है। कई सोचते हैं मन आत्मा से अलग है, आत्मा तो सदा ही पावन है और मन सदा ही पतित है। अब परमात्मा कहते नहीं, आत्मा सदा ही पावन भी नहीं है और मन सदा पतित भी नहीं है। मन में जैसे सोच चलते हैं उसी अनुसार वही आत्मा है। मन प्राकृतिक नहीं है जो ब्रेन में हम लोकेट कर सके कि मन कहाँ है। मन आत्मा के ही सोचने की शक्ति है, ही दो चीजें शरीर और आत्मा। तो मन वो ब्रिज का काम करता है जो आत्मा और शरीर के बीच में अनुभव कराता है। पर है वो आत्मा की शक्ति जिसको हम कहते हैं सोचने की शक्ति। अब सोचने में तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो मन क्या है? एक एनर्जी वेव्स है जो आत्मा की शक्ति है, और वो एनर्जी वेव्स मन से निकलते हैं, वो आत्मा से ही निकलते हैं। हम अपनी एनर्जी वेव्स से अपने वाइब्रेशंस बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वातावरण बनाते हैं, वैसी ही वाइब्रेशंस बनते हैं, वैसा ही सोच दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो हम मन से जो कुछ भी सोचते हैं ये आत्मा की शक्ति है। अब मन में तो बहुत सोच चलते हैं, पर हर सोच को हम कर्म में तो लाते नहीं है। बीच में दूसरी शक्ति है बुद्धि, इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। मन का काम सोचने का है, फिर बुद्धि का काम समझने का है। जैसे एक छन्नी होती है, वो चाय छानने छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, वो रिजेक्ट कर लेती है और चाय पीने के लिए वो कप में आ जाती है। तो बुद्धि भी उस छन्नी की तरह है जो क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है वो डिसाइड करती है। इसलिए सब कुछ जो सोचते हैं वो कर्म में नहीं लाते हैं, बीच में समझ शक्ति है और वही अंतर आत्मा की आवाज है। कई बार हम मन में कुछ बुरा सोच लेते हैं और फिर सोचते नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब ये किसने निर्णय दिया? ये अंतर आत्मा की आवाज ने निर्णय दिया, यानी बुद्धि ने निर्णय दिया। तो बुद्धि एक तराजू की तरह भी है जो हमें वजन देती है हमारे मूल्यों को, क्योंकि जब तक हमने अपने जीवन के मूल्यों को नहीं पहचाना है तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ कभी नहीं बन सकता है। तो बुद्धि वो मूल्यों की पहचान देती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सब की पहचान बुद्धि कराती है और फिर आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। और जो कर्म आत्मा देह से करती है, क्योंकि देह तो माध्यम है, आत्मा उस देह से कर्म करती है, वही कर्म आत्मा के अंदर ही निहित हो जाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम जो बोल रहे हैं जो एक्शन कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आत्मा भी इस प्रकार का रिकॉर्ड है। हमारी हर सोच, हमारी हर शब्द, हमारा हर कर्म वो आत्मा में भरता जाता है, इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है और वही आत्मा अपने साथ ले जाती है और उसी अनुसार फिर जन्म लेती है। इसीलिए जब कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, यानी जो आप सोचोगे, जिस प्रकार आप समझोगे, फिर उस अनुसार जब कर्म करोगे वो कर्म आपके संस्कार बन जाएंगे, वो भी आत्मा के अंदर एक रिकॉर्ड है। और आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र बन करके श्रेष्ठ कर्म करेगी तो अपने को सुख देगी, अगर भ्रष्ट कर्म करेगी बुरे कर्म करेगी तो अपने को दुख देगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ये कर्म की गति है। और वो कर्म भी आत्मा के साथ ही जाते हैं। बस ये अगर हमने समझ लिया तो हमने अपने जीवन को संवार लिया। तो मैं कौन हूँ, इसका बहुत सरल उत्तर है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, सदा थी हूँ और रहूंगी, और ये शरीर, ये जीवन एक पड़ाव है, यही सब कुछ नहीं है। और जो मैं चाहती हूँ मैं वही हूँ, अर्थात मैं आत्मा, मेरा जो मूल स्वभाव है वो शांति है, वो पवित्रता है। जब भी मन में अपवित्र विचार आते हैं तो कहते हैं मन खाता है। क्यों मन खाता है? क्योंकि मेरा असली स्वभाव तो पवित्रता है। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये आत्मा के सात मूल गुण हैं, जो आत्मा में सदा ही निहित है। लेकिन आत्मा अपने आप को भूल जाती है। ये स्मृति और विस्मृति का ये खेल है ये संसार। आत्मा अपने पूर्व जन्म को नहीं याद कर रख सकती, इस जन्म में सब भूल गई, फिर इस जन्म का अगले जन्म में सब भूल जाएगी। तो ये स्मृति विस्मृति का जो खेल है इस संसार में, इसको हमें समझना होगा। तो क्या याद रखना है, क्या भूलना है, ये भी हमें समझना होगा। इन सब को समझना, ये वास्तव में खुद को समझना है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पहला पाठ यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ। जैसे इस शरीर पर मैंने वस्त्र धारण किए हैं, ये शरीर से भिन्न है, वैसे ही शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से भिन्न है। और जिस प्रकार एक एक्टर किसी मंच पर आकर के वस्त्र धारण कर वैसा रोल बजाता है, उसी प्रकार आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर अपने भिन्न भिन्न रोल अदा करती है। लेकिन ये रंग मंच संसार का, ये मेरा घर नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, ये शरीर के लिए नहीं कहते हैं। तो आत्मा का घर जरूर इस संसार से अलग है, परे है। कई बार दुखी मन से हम भगवान को कहते हैं, हे भगवान बस उठा लो मुझे इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है। क्यों कहते हैं ये? हे भगवान उठा लो। उठा लो माना किसको उठाए और कहाँ ले जाए? उठा लो माना आत्मा भगवान को कहती, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। अब राजयोग में हम कहते हैं भगवान को ऐसे पुकारो मत, हे भगवान मुझे उठा लो। आप मन से, बुद्धि से आप जा सकते हो, बिना वास्तव में जाए भी। जैसे आप यहाँ बैठे हो और अपने घर को याद कर रहे हो, तो जैसे आप घर में पहुंच गए, तो यहाँ बैठे भी मन बुद्धि से आप अपने धाम में जा सकते हो। लेकिन आत्मा उस धाम को भूल गई है, तो खुद को भी भूल गई है, अपने धाम को भी भूल गई है, अपने पिता परमात्मा को भी भूल गई है। इसलिए परमात्मा ही वो स्मृति हमें दिलाते हैं कि हे आत्माएं पहचानो अपने आप को। इस सृष्टि रंग मंच पर तो आप एक एक्टर हो, आपका घर इस पांच तत्वों की दुनिया से बहुत दूर है। वो छठा महतत्व है जो अखंड ज्योति का महतत्व है, जिसको ही ब्रह्म कहते हैं। और उस महतत्व में मुझ आत्मा का असली निवास है, जहाँ सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वो आत्मा का धाम है। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं इस संसार में मेहमान हूँ, मेरा घर तो इस पांच तत्वों से परे वो शांति का धाम है, परम धाम है, मुक्ति का धाम है, तो मन बुद्धि से एक सेकंड में जा सकते हैं उस धाम में, देर नहीं लगती। और यही राजयोग का पहला कदम है। तो मैं कौन हूँ उसको पहचानो, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा धाम कहाँ है और मेरा कर्तव्य क्या है। किसी का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं। पहले उनका नाम पूछते हैं, फिर उनके फिजिकल स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं, हाइट वेट आदि आदि कुछ डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ये पूछते हैं रूप हो गया, फिर उनके क्वालिफिकेशंस पूछते हैं, उनकी एड्रेस पूछते हैं, ऑक्यूपेशन पूछते हैं। तो आत्मा का भी ऐसे ही है। आत्मा का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति कभी बुझती नहीं है, इसीलिए कहा आत्मा न कटती है, क्योंकि कोई भी तलवार उस आत्मा को काट नहीं सकता, ज्योति को कोई काट नहीं सकता। जलती भी नहीं है, सूखती भी नहीं है, डूबती भी नहीं है, क्योंकि मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, सत्य हूँ, परिवर्तनशील नहीं हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, सदाई वो ज्योति रूप हूँ। लेकिन इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। इस सृष्टि पर मैं क्यों आई? ये दुनिया हमारी, हमारा घर नहीं है। लेकिन किस लिए आई संसार में? तीन लक्ष्य लेकर के आई। पहला लक्ष्य था, जैसे एक एक्टर रंगमंच पर आता है एक्टिंग करने लिए, मैं आत्मा भी इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस संसार में एक्टिंग करने लिए आई हूँ। कई कहते क्या जरूरत थी एक्टिंग करने की? जरूरत बहुत थी, क्योंकि आत्मा के अंदर ये संस्कार है, कर्म करने के संस्कार, और कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। किसी सीडी में बहुत अच्छा म्यूजिक हो, लेकिन वो सीडी का फायदा तब है जब सीडी प्लेयर भी हो। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिकॉर्ड को बजाने लिए उसका प्लेयर भी तो चाहिए। तो शरीर है उसका साधन। आत्मा के अंदर कर्म करने की बहुत सुंदर कला है। जैसे कलाकार को कला प्रदर्शित करने लिए मंच चाहिए, स्टेज चाहिए, तो ये संसार एक रंग मंच है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। बस ये अगर हम समझ जाएं कि ये मेरा लक्ष्य था, इस संसार में आकर के अपना अपना रोल बजाना, और उस रोल में क्या रोल बजाएं, वो लक्ष्य भी एक है। और वो रोल का लक्ष्य है कि जो भी मैं कर्म करूं, वो आत्मा के गुण उन कर्मों में निहित हो, उसमें समाये हुए हो। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये गुणों की मैं स्वरूप हूँ। तो वो मेरे कर्म द्वारा, मेरे वचन द्वारा, मेरे संकल्पों द्वारा व्यक्त कर सके, ये वास्तव में मेरा लक्ष्य है। और जितना हम इन गुणों को अपने कर्मों द्वारा, वाणी द्वारा, संकल्पों द्वारा व्यक्त करते हैं, उतनी ये शक्ति आंतरिक हमारी बढ़ती जाती है। अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो सुख नहीं मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। दुनिया में हम दूसरों को कुछ देते हैं तो हमारा कम हो जाता है, लेकिन शांति, सुख, प्रेम, ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और कैसे बांटेंगे? मन, वचन, कर्म से। ये आत्मा की ही शक्ति है। तो किस लिए आई संसार में? इन गुणों को बांटने अथवा बढ़ाने, ये दूसरा लक्ष्य था। और तीसरा लक्ष्य था कि इन गुणों को बांटकर बढ़ाने से हम उस परमात्मा का भी नाम रोशन करते हैं जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। इसलिए हम अपने आप से पूछें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें उस परमात्मा का नाम रोशन हो रहा है? हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आत्मा के गुण दिखाई दे रहे हैं? हम जो भी कर्म कर रहे हैं एक एक्टर की भांति न्यारा प्यारा होकर के कर रहे हैं? कहीं फंस तो नहीं रहे हैं? बस ये अगर लक्ष्य हमने ठीक रखा तो इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा, बाकी तो कुछ भी साथ नहीं चलेगा। बस यही अगर हमने समझ लिया तो ये जन्म भी सफल होगा, तो जन्म जन्म भी हमारे सफल होंगे, और हम इस संसार को बहुत सुंदर, सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय बना सकेंगे। अब यही हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। तो चलिए इसका हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हमने इसका अभ्यास नहीं किया है तब तक हम इनका अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। और इन गुणों की विशेषता ये है कि जितना हम चिंतन करेंगे, ये चिंतन यही अभ्यास अनुभव का रूप बन जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, एक सेकंड में हमको शांति का अनुभव होगा। वास्तव में हम तीन बार ओम शांति क्यों कहते हैं? तीन बार कहने का अर्थ है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा धाम शांति का धाम है और मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। तो इसीलिए दादी जानकी जी ने भी कल कहा, तीन बार ओम शांति कहा, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो मैं कौन हूं? एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति का मतलब ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर दूसरी बार ओम शांति, मेरा पिता परमात्मा कौन है? वो शांति का सागर है। फिर तीसरी बार ओम शांति माना, मेरा धाम शांति का धाम है, जहां से मैं आत्मा इस संसार में आई हूं। तो मैं, मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा घर शांति का धाम। बस ये चिंतन किया, शांति तो आपके गले का हार बन जाएगी। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज आपका बहुत बड़ा सत्र है, बहुत बहुत कार्यक्रम है आपका। 9:30 बजे से ही आपका कार्यक्रम शुरू हो जाने हैं दूसरे, इसलिए अब जो कुछ आपने सुना उसका हम अनुभव करेंगे। 5-7 मिनट के लिए सीधा बैठेंगे। अपने आप से बातें करना, स्वयं को पहचानने के लिए अपने आप से बातें करें। अंदर में जाएं, बहुत हल्के हो जाएं। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे कहां जाना है? और उसके लिए क्या करना है? अब अपने आप को ही उत्तर दीजिए। मैं एक आत्मा हूं। एक दिव्य ज्योति हूं। प्रकाश का पुंज हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर में मेरा निवास स्थान, दो नेत्रों के बीच में प्रकृति के मध्य है। जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, शरीर में मेरा यहां ही लोकेशन है। तो अपने आप को मस्तक पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। ये शरीर एक वस्त्र के समान है। इस वस्त्र को धारण कर मैं आत्मा सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूं। मुझ आत्मा ने अनेक अभिनय किए, अनेक पाठ बजाए, अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए, अब मुझ आत्मा को वापिस अपने धाम जाना है। पांच तत्वों से पार, अखंड ज्योति के महतत्व में जहां सूर्य चंद्रमा सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, उस बेहद शांति के धाम में मन और बुद्धि से एक उड़ान भरकर उस धाम में पहुंच जाए। एक बेहद प्रकाश की दुनिया जहां चारों ओर शांति ही शांति है। सुनहरा लाल प्रकाश इस दुनिया में व्याप्त है। और मैं आत्मा इस बेहद दुनिया में सर्व बंधनों से मुक्त हूं। अति निर्संकल्प हूं। शांतम मेरी चारों ओर शांति ही शांति है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, शांति के धाम में अति शांत स्थिति में हूं। मन एकदम शांत हो जाए, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रही हूं। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, अति शुद्ध हूं, पवित्र हूं। अब मुझ आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। अपने मन वचन कर्म द्वारा यही मुझे स्वरूप व्यक्त करना है। यही है स्वयं को पहचानना। इसी से मुझ आत्मा का परिवर्तन होगा और जीवन में सच्ची शांति आएगी। और इस आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा और विश्व में भी शांति आएगी। ओम शांति।